जो गोपियों का गोपियों के साथ में उद्धव जी का ये आदान प्रदान हुआ था एक भावों के देकर। इसमें प्रारंभ से 14 या कितने श्लोक हैं
धैर्य रखते हैं
किसी को नाम नहीं था मेरा स्नेहा से ग्रहण कर रहा तुम्हारे परिचित जितने भी भक्त हूं विशेष करके जैसे खिलो चैतन्य दास आदि को मेरा आंतरिक स्नेह आशीर्वाद देंगे और स्वयं भी ग्रहण करें। आपका तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ 10 जून 1995 का पत्र मिला उसके समस्त समाचार ज्ञात हुआ। साथ ही आज सवेरे 2 जुलाई को तुमसे फोन से भी बातचीत हो गई। फोन से बातचीत करने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ किंतु केवल मात्र कमल के छोटे भाई मृत्यु से दिल्ली में भी सबका मन खिन्न है और मेरा भी चित्त कुछ खिन्न हो गया क्योंकि इसमें कुछ करने का नहीं है। भगवत स्मरण करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा पथ नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसकी सदगति हो। इस बार भारत यात्रा के दौरान उनको मेरे साथ हरि कथा सुनने का बहुत सुयोग प्राप्त हुआ। उसकी उपलब्धि की है जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। जैसे कि तुम्हारा यह अंतिम वर्ष है तो बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है फिर भी हमारे कैसेटों का अनुवाद करना आरंभ कर दिया है यह बहुत ही उत्साहवर्धक है। तुमको जितना समय मिले उसी के अंदर में ही तुम कर मैं रामानंद के कैसेटों को सुविधा अनुसार में भेजने की चेष्टा करूंगा। वेणुगीत छप गई है किसी प्रकार से सुविधा होने पर तुम्हें 10 प्रतियां भेजने की चेष्टा कर रहा हूं। अन्यथा एक तो पोस्ट के द्वारा भेजी दूं मैं एक प्रति तुम्हें भेजने की चेष्टा करूंगा। पीछे से तुमको और भी पुस्तकें भेज दूंगा। विग्रह को विग्रह का श्रृंगार करते समय श्री कृष्ण के मस्तक पर आवश्यकतानुसार तिलक बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। अपना संप्रदाय तिलक हो तो और अच्छा ही है, नहीं हो तो केवल यू बना भी सकता है, और कभी कभी नहीं भी केवल सिर में मस्तक पर से जैसे तो क्या होता है,
हल्का
होता है सिर से कपोलों तक, वैसा बना भी सकता है, जैसे भी उनको सुंदर लगना चाहिए। भक्त प्रहलाद नृसिंह देव के सिद्ध परिकर भी, और दूसरी दृष्टि से प्रहलाद महाराज साधक भी दिखते हैं, क्योंकि वे एक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण से लड़ते थे, एक वेश्या के साथ में उनकी प्रीति हो गई थी, उसने इनका सर्वस्व अपहरण करने के बाद में इनको अपने यहां से भगा दिया, जिससे अपना प्राण हत्या करने के उद्देश्य से जंगल में चले गए। वहां पर भना घोर दृष्टि में बचने के लिए एक मंदिर में छिप गए, रात भर उस वेश्या के लिए तड़पते रहे, भोजन भी नहीं हुआ। उस दिन बाई चांस नृसिंह चतुर्दशी थी और नृसिंह जी का मंदिर, इसलिए वो पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज होकर के आए। यहाँ पर इस प्रकार से समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज नित्य होने पर भी कोई जीव तत्व भक्त प्रहलाद महाराज जी की के पूर्व जन्मों की भांति उनका साधन के द्वारा भगवान को पाया और प्रहलाद महाराज जी बने, अर्थात नित्य प्रहलाद महाराज में इनका प्रवेश हुआ। इस प्रकार से इसका सामंजस्य कर सकते हैं। ध्रुव साधक जी हैं, इनको सिद्ध परिकर के रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि उनके अंदर में सकाम भावनाएं हैं। दूसरी बात, आप मेरे प्रति श्रद्धा रख करके, आप मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रख कर भी इस्कॉन तथा इस्कॉन के अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। जिसके द्वारा भगवान की तरफ आने का सुयोग मिलता है, उसे गुरु मानना ही चाहिए। केवल एक परिस्थिति है, यदि वो वैष्णव की गुरु की निंदा करते हैं और भक्ति पथ से दूर हो जाते हैं तो ऐसे गुरु का प्रत्याग करने का विधान है। अतः मैं नहीं चाहता कि आप इस कौन को या अपने गुरु को छोड़ करके हमारे पास में, केवल मात्र हमें इसे ही श्रद्धा रखें। इसलिए अभी मैं दिल्ली गया था, बम्बई से लौटते समय तो मेरे मना करने पर भी वो सोमनाथ जी के घर पर मुझे रात 8:30-9 बजे के करीब में मिलने के लिए आए। 5 मिनट का समय लेकर के भी करीब करीब 1 घंटा तक मेरे पास में रहे और सब समय क्षमा कीजिए ऐसी बातें कह रहे। मैंने कहा है, इससे क्षमा करने की कोई भी बात नहीं है, अपने विचार से आप लोग चल रहे हैं वैसा चलिए, अपना धर्म पथ पर रहिए, हम अपना जैसा चलते हैं, इसमें कोई त्रुटि की बात मैं नहीं देखता। रही कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, उसे बचने की चेष्टा करेंगे जिससे कि वैष्णव अपराध न हो। विशेष करके रामचंद्र जी को अपने भक्तों की दृष्टि में जो गिराया गया है, आपने गिराया है, यह बात बहुत ही खराब है और भक्ति विरुद्ध है। इसलिए इस
चीज को सुधारने की चेष्टा करें। उन्होंने इसको स्वीकार किया। अतएव मुझे उसमें कोई भी बात नहीं है, तुम उनको श्रद्धा करते हुए हमारे प्रति श्रद्धा रख सकते। हमारा प्रेम, हमारा तुम्हारे जो स्नेह है वो स्वार्थ के, किसी भी स्वार्थ के बस नहीं है। तुम्हारा आत्मकल्याण हो बस इसी के दृष्टि से हमारा स्नेह है। हो सकता है कि इस कोन वालों को तुमसे कुछ स्वार्थ हो, किंतु हमारा तुम्हारा हमारा तुमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है। केवल भगवत भक्ति की दृष्टि से ही मैं तुम्हें स्नेह करता हूं। दूसरी बात, तुमने जो प्रस्ताव रखा है विवाह इत्यादि के संबंध में, मेरे समझ से अभी तुम तुम्हारा अंतिम वर्ष पूरा करो, इसके बीच में विवाह इत्यादि की कोई भी झंझट इत्यादि या चिंता मत करना। यहाँ आने पर जैसा होगा, बहुत से परिचित लोग हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ आते ही जैसी स्थिति होगी वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भगवान का भजन में दृढ़ चित्त होकर के लगे रहो। अभी क्या आंख के ऑपरेशन की बात तुमको फोन के द्वारा ही लिख दिया है। अभी तुम्हारी माता जी का भी फोन आया था। अभी कल धुंदा का भी एक फोन मिला। मैंने फोन से कमल की मैया से भी बातचीत की और उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा की। यदि मैं दो चार दिन के अंदर में दिल्ली जाऊंगा तो उनके घर पर जाकर उनको सांत्वना देने की चेष्टा की। अभी क्या तुम बीच बीच में पत्र देते रहे? आशा करी तुम्हें शारीरिक अनुभवन को परमा राज्य तम से गुरु पापद में ऐसे के पास शारीरिक अनुभवन तुम्हारे 5-6-95 तारीख तक पत्र आ गया। सकल विषय तुम्हें हिसाब इत्यादि आ गया एवं তোমার ওখানে ঢুকে সংশোধিত আমাদের হিসাব হিসাবের কাগজ নামটা কি মিলাদের দ্বারা প্রেরিত পাইয়াছে। তুমি বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করতেছো জানি। প্রসঙ্গ বসত গড়িয়া রাখি আমি বর্তমানে বোম্বে গিয়াছিলাম। আমার চেক আপ হইয়াছে, বেশ ভালোই আছে। চোখ প্যাটর পূর্ণ হইয়াছিল। ডাক্তাররা তা কাটাইতে পরামর্শ দেয়। আমি সব রকমের সুবিধা এবং সেখানকার বসন্ত ঋতুর নতুন আবহাওয়া দেখিয়া উচ্চ কোটির ডাক্তার
চাইলে ওকে বলে দিলাম, ওরা বলতে আমরা 20-25 জন আসবো। আমরা
আচ্ছা দেখিয়া আমি সেইখানে 17 জুনে সেখানে অপারেশন করাইয়া দিল। আমি গত 10 তারিখে পৌঁছেছি, 26 তারিখে এখানে পৌঁছিয়াছি এবং বেশ ভালোই আছি। কোনোরকম চোখেতে কোনো অসুবিধা নেই, কর্মে 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 ভালো হইতেছে। তবে এখানে বোম্বে ঋতু অপেক্ষা এখানে কিছু সামান্য বর্ষা হলেও খুব তাপ মনে হইতেছে। এখানে গত 19 জুন হইতে 1 তারিখ পর্যন্ত ভগবত কথা সমাপন হয়ে গেছে। সেখানে বেশ সুন্দরভাবে বহু লোকের সমাগম হতে হইত। সম্পূর্ণ আঙ্গন নাট্য মন্দির ইত্যাদি ভরিয়া যাইত এবং শেষ দিনে বিরাট ভাবে সমাপন উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার বক্তব্য যে আমি আবার কার্তিক মাসের পরে নভেম্বর মাসে বোম্বে যাইব। তুমি যদি কার্তিক মাসে এখানে চলিয়ে আসো তাহলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বোম্বে ওই হাসপাতালে যেখানে আমার অপারেশন ইত্যাদি হইয়াছিল ডাক্তারকে দেখিয়া অনুসন্ধান করিয়া তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিব। যদি তুমি কার্তিক মাসে পূর্বে এখানে না আসো তাহলে তুমি যেখানে থাকো আমি তোমাকে পরবর্তীকালেতে ডেট জানাইব, ওই ডেটে অনুসারে আমি ওর দিকে বোম্বে পৌঁছব, তুমি ওইখানেতে আমার অ্যাড্রেসেতে যেখানে অ্যাড্রেস দিব সেখানে পৌঁছিয়া যাইব। সেখানে তোমাকে কিছুদিন যদি থাকতেও হয় আমি থাকিয়া তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা ওখানে করতে পারব। তুমি এখনই থেকে এর প্রস্তুতি লইব। পূজ্যপাদ বামন মহারাজের কথা অবগত হইলাম। নদীতে ও কলিকাতার সমস্ত ভক্তগণ কুশলে আছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তারপরে কি কাশীনগরে নিকিঞ্জর ছোট ভাই বিভিন্ন অকস্মাৎ মৃত্যু কথা জানিয়া পরলোক গমনের কথা জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। এ বিষয়তে কিছু করবার নেন, তাহার আত্মার গতি হোক এই প্রভুর নিকটকে প্রার্থনা জানান। আর কি এখানে যদিও খুব একটু বর্ষা হয়েছে কিন্তু খুব অল্প, তাতে গরম কিছু পড়ে বলতে আরো গরম কিছু বাড়ি। বৃন্দাবনে মঠে দুটি মঠে এখানে সমস্ত বৈষ্ণবরা কুশলে আছে, সব উৎসাহপূর্বক আছে। চন্দন দু একজনকে সঙ্গে লইয়া
বিগ্রহ
বিগ্রহ আনবার বিগ্রহ ব্যবস্থার জন্য অর্ডার দেবার জন্য
জয়পুরে
গিয়েছে।
শেষ কুশল
শেষ কুশল মধ্যে মধ্যে পত্র দিবে। আদরণীয় গীতা গীতা চ্যাটার্জী আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করবে। পত্র পাইয়া আমি আপনাদের শুনতে পারলাম, আপনার স্বামী মারা গিয়েছেন জানিয়া দুঃখিত। যা হোক আপনি মথুরাতে আসলে মথুরা অথবা বৃন্দাবনে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। তবে আপনি শ্রাবণ মাসের সময় ওই সময়তে আসলে ভালো হয়, ওই সময় বৃন্দাবনেতে মথুরাতে খুব উৎসব ইত্যাদি হইয়া থাকে, সব জায়গায় ঠাকুরের দর্শনও ভালো পাওয়া যায়। ওই সময় ঘুরনের সময় আপনি কখন আসবেন আমাকে জানাইবেন। আর একটি কথা, আমি প্রায় রাজৌরি গার্ডেনেতে যাই, আপনি ফোন নম্বর দিয়া দিলে আমি দিল্লিতে গেলে আপনার সঙ্গে ফোনেতে আমি কথা বলেছি। অতএব এই পত্রেতে আপনি আগামী পত্রেতে আপনার ফোন নম্বর এবং অ্যাড্রেস
অ্যাড্রেস
আছে, ফোন নম্বর আপনি আমাকে জানাইবেন, তাহলে আমি কথাবার্তা আপনার সঙ্গে উঠা নেব। আমি হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লি যাব। আপনার আপনি আমার স্নেহাশীর্বাদ জানবেন। আপনার তারিখ তারিখ আপনার পত্র পাইলাম, সব কুশল সংবাদ অবগত হইলাম। আপনি কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না জানিলাম। আমিও ওখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু ব্যস্ত থাকার জন্য আপনার কোন সংবাদ লইতে পারিনি। যা হোক, আপনি আমি ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়েছেন জানিয়ে আনন্দিত হইয়াছি। কি হয়েছিল স্যার? কি হয়েছে?
ডান পায়ে আঘাত লেগে,
আপনার ডান পায়ে আঘাত লাগিয়েছে জানিয়া চিন্তিত রইলাম। আপনি জানাবেন বর্তমানে আপনি কিরকম আছেন? আমি বোম্বে গিয়েছিলাম চেক আপের জন্য। সেখানে চেক আপ করিয়া ডাক্তার ভালোই বলিয়াছে, ভালোভাবে চলছে। তবে আমার চোখে ডান চোখের ক্যাটারাক্ট অপারেশন হয়ে গেছে। আমি এখনো 15 দিন হইয়াছে, মনে হয়েছে বেশ ভালো হইয়াছে। কিছুদিন আর সাবধানীপূর্বক থাকতে এখানে, যদিও একটু সামান্য বর্ষা হয়েছে, তথাপি এখানে খুব গরম। বোম্বেতে একেবারে বসন্ত ঋতু মতন বেশ সুন্দর সময়। এখানে শ্রীমদ ভাগবত দ্বাদশ দিন হইয়াছিল, বহু লোকের সমাবেশ ইতিমধ্যে হইল। মঠে ব্রহ্মচারী সব লোক কুশলে আছেন, মঠে মধ্যে আপনি পত্র দিবেন। সুকাদ বৈষ্ণব মহারাজ, অনেকদিন তোমার কোন পত্র পাইনি, আশা করি পরমারাধ্যতম শিষ্য গুরুদেবের কৃপায় ভাইপতি কৃপায় তুমি এমন মাঠবাসী সকলেই কুশলে আছো। বর্তমানে তুমি কিরকম আছো, মঠ কিরকম চলছে সে জানাই। আমি বোম্বে গিয়েছিলাম চেকআপের জন্য। সেখান হইতে 26 জুনে এখানে ফিরিয়াছি, মোটামুটি ভালোই আছি। তবে আমার চোখে ক্যাটারাক্ট হইয়াছিল, তাহা 17 জুনেতে অপারেশন করাইয়াছি। অপারেশন বেশ ভালো হইয়াছে, তবে এখনো কি 1 মাস পর্যন্ত সাবধানীপূর্বক থাকতে। মধ্যে মধ্যে তোমরা কুশল জানাইবে আমি আনন্দিত। বর্তমানে আসামের কি পরিস্থিতি তাহাও জানাই। বিষ্ণু মহারাজ, আশা করি জমা হবে। এখন থেকে চেষ্টা করবো বিসর্জন যদি পাওয়া যায় যাতে নিয়ে আসতে, নাই এমনি তোমরা পরিক্রমা এখানে আসবে, 1 মাস থামত হরিকথা ইত্যাদি শ্রবণ এমনি।
প্রিয় কৃষ্ণ মুরারি,
আপ মেরা স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করেন। আপনার পত্র 16/6/95 কা মিলা, পড়কর অত্যন্ত আনন্দিত হুয়া। আপ মেরে শিক্ষা কে অনুসার মে নিয়মিত রূপ মে শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবান কি সেবা মে আর ভগবত ভজন মে লগাতে হ্যাঁ, জ্ঞান করকে বহুত হি প্রসন্নতা হুই। मैं समय अनुसार मैं जयपुर में आऊंगा, तब उस समय आपसे वहां पर भेंट होगी। अभी मैं बम्बई गया था, वहां आंख का एक ऑपरेशन किया, अभी 1 महीना उसमें सावधानी से रहने की आवश्यकता है। आप इसी तरह से श्रद्धापूर्वक भगवत भजन में लगे रहेंगे तथा अपने घर का काम भी अच्छी तरह से करते रहेंगे। अभी क्या गोविंद जी आपकी भक्ति को ठीक रखें, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता
हूं।
जय गोपाल, जय गोपाल, ये जो जय गोपाल
बोलो,
हमारे स्नेहा की बात ग्रहण कर दे। हमारे 195 तारीख के पत्र पाई जाए, कहा सफल संवाद अवगत है ना। আমি নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সময় তোমাকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ কথা তখন হয় না। মনে করিয়াছিলাম পরিক্রমার পরে তোমাদের সকলকে নিয়ে আমাদের কমিটির মেম্বারগণের সামনে কথাবার্তা বলিয়া তোমাদের কি সুবিধা অসুবিধা আছে জানিয়া তাকে সামঞ্জস্য করবার জন্য চেষ্টা করিবে। আমি মনে করেছিলাম যে তুমি বিনা আমার সঙ্গে দেখা করিয়া তুমি কিছুতেই যাইব না, যাইবে না, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম যে তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া তুমি পূর্ণিমা থেকে পূর্বেই তুমি না জেনে কোথাও চলে যাবে। কোথায় যে তুমি আছো যে তোমাকে পত্র দিব তাও আমি বুঝি ঠিক করতে পারলাম না। আমার ইচ্ছা খেলি যে তোমার সঙ্গে আমার কোন আলাপ হলে ভালো হয়। যা হোক, তুমি পত্র দিয়াছ, কিন্তু মনে হয় তুমি ভুল করছ। তোমার যদি এইরকম ছিল তাহলে নদীতে থাকতে, অথবা তুমি আমার এইখানে তুমি চলিয়া আসতে। তুমি তা না করে গুরুপাদ পদ্ম আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ ভাবেতে আবার তুমি এদিকে দিকে দিয়ে বেড়াতে। যদি তোমার বিরুদ্ধে ওই কোন জায়গা ধুবড়ি ধুবড়িতে কেউ কিছু বলেছিল অথবা করেছিল, আমি তাহাকে শাসন করতাম, কিন্তু তুমি নিজে মতে মত ছেড়ে দিয়ে আর তুমি চলে গেলে, এটা তোমার উচিত। আমার মনে হয় যখন তুমি সদ্গুরু পদাশ্রয় করিয়াছ, নিঃস্বার্থ ভাবেতে আমাদের সকলেরই তোমার প্রতি প্রীতি রয়েছে আর তোমার ভজন করবার একান্তিক ইচ্ছা, তাহলে তোমার সমস্ত স্বতন্ত্রতা ছেড়ে দিয়ে তোমার গুরু পাদ পদ্ম অথবা আমরা যা বলি তদ অনুসারে তুমি ভজন করলে ভালো। যদি ওই ওইখানে মঠেতে রাজনীতি ইত্যাদি ছিল, কিন্তু আমার এখানে যখন এসেছিল ওখানে কি রাজনীতি ছিল? অতএব তুমি যৌতিক স্বতন্ত্রতা বাদ দিয়ে তুমি যদি হয় তাহলে মথুরাতে তুমি চলে আসো। এখন এখানে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে, এখন কোনো বিশেষ তাপ নাই, এখানে কিছুদিন থাকো, তারপরে তোমার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো মঠেতে আমরা তোমাকে অথবা নদীতে থাকবে, অথবা তোমারকে মঠের রক্ষক করে আর আমাদের ধুবড়িতেই তোমাকে রেখে দেবো, তোমার যারা বিরোধ করছে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে। অত এই বিচার করে দিয়ে তুমি একান্তে কোথাও অলগ না থেকে তুমি তোমার গুরুপাদ পদ্মে অথবা আমার নিকটেতে এখানে মথুরাতে তুমি চলে এসো, অথবা তোমার নদীতে থাকতে সুবিধা হয় তাহলে ওইখানে থাকবে, পরবর্তীকালে তুমি যেরকম ভাবে বলবে সেরকম দেখে শুনে। অধিক তোমাকে আমি কি বলি, ভগবান তোমার মঙ্গল বিধান করুক, গৌর সুন্দর তোমাকে কৃপা করুক। নবদ্বীপ দাস, প্রিয় নবদ্বীপ দাস, ভেরি আন্তরিক মেরে হৃদয় কি আন্তরিক হৃদয় কা আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ গ্রহণ করে। আপনি 28/6/95 তারিখ কা পত্র তুমি কোথায় দিব? সব সমাচার জানকর, সমাচার জানকর বহুত হি আনন্দিত হুয়া। শচী দেবী কে লিয়ে ভি মেরা কহ দেনা, আপ অনাথ নিরাশ্রয় আর পতিত নহীঁ হ্যায়, ভগবান কি আপ পর অহেতু কি কৃপা, আপকো বৃন্দাবন মে ধাম মে স্থান দিয়া, আপ ক্রমশঃ রাগানুগা শিল রূপ গোস্বামী কে রাগানুগা ভজন মার্গ পর অগ্রসর হো রে, সমস্ত গ্রন্থো কা প্রকাশন কর, ইসিলিয়ে মে আপকো বহুত হি স্নেহ আর আদর করতা হুঁ। আপ জেসে পরিশ্রমী এবং একান্তিক শ্রদ্ধালু ভক্ত কো পাকর बहुत ही प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके द्वारा बहुत से कार्य करने हैं और भक्ति ग्रंथ का प्रचार करना है, आप इसके लिए तैयार रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से आप पोलैंड पोलैंड में आप पहुँच गए हैं। मुझको इसकी सूचना बजनाथ प्रभु जी से मिली। मैं समझता हूँ कि ये लौटने पर आपसे वहाँ पर भेंट होगी। भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु का अनुवाद समाप्त हो गया है और आपने तीर्थ पद प्रभु को वो संशोधन के लिए एक कॉपी दे दी है, जानकर के आनंदित हुआ। मनुष्य शिक्षा के हिंदी और बंगला संस्करणों को ध्यान के रूप में आपने पाठ किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य शिक्षा का अनुवाद भी आप देख करके और उसे सुधार करके अच्छी तरह से उसे ठीक कर लीजिए। इसलिए मैं उसका कुथा से कॉपी कर कॉपी तो के दिए मैं ब्रजनाथ प्रभु जी के साथ में उस कॉपी को जानकी जी से लेकर के आपके पास में भेज रहा हूँ। उसमें जैसा हो आप चेक करके उसमें एडिशन अल्टरनेशन क्या एडिशन
परिवर्तन
संशोधन और परिवर्तन इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। अभी क्या मैं आपकी सर्वांगीण उन्नति और भजन विषय में उन्नति की कामना करता हूँ। श्री गुरु गौरांग अनुराधा विनोद बिहारी जी आप पर विशेष रूप में कृपा करें, आप बीच बीच में पत्र मुझे दें। बस
अभी आइए तो किस बात की बात है, कितना ग्राम ऊपर नहीं देगा उसमें आप क्यों करें और इस समय उसका पक्ष लेकर के लड़ने आए, बंधक उनको जा रहे हैं। उन्होंने कहा बंद गला छोड़ दिया और मन ही मन में कृष्ण को प्रणाम करके फिर यात्रा पर निकल गए। ये कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, जगत में कृष्ण की इच्छा से ही चल रहा है। अभी जो कुछ हो रहा है कृष्ण के हाथ में बागडोर है, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही जगत चल रहा है। हम समझते कि मायावती का राज्य है, पहले गुलाम सिंह का था, ये नितिन का राज्य का है, ये किसका है, ये अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, ये सब का है। उन्होंने कोई भी बागडोर फिर कर रखी है जो कर रहे हैं, केवल सब कृष्ण के हाथ में है। कल्पी को भी तो कुछ देना चाहिए इसलिए उसको देकर के बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग कल्पी से दूर रहेंगे और दूर रहेंगे, ऐसे दूर रहेंगे इस कथा के सुनने से, केवल सुन करके यहां से जाते समय में आपकी होने के बाद में जब कुछ है तो ये मत करिए कि मैं हरी कथा को यही छोड़ करके मैं जा रही हूं या जाना, ये अंतर मत है। मैं इस कथा को अपने दिशाने कानून से लेकर के जा रहा हूं और इसका पालन कर और सबको पालन करने की चेष्टा मेरा अंतर सम्मान करना। जो लोग विधायक कथा यहां पर सुनी है बस इसका चिंतन करो, घर का काम करेंगे करेंगी किंतु साथ साथ में मिलाऊंगा भगवान का नाम का स्मरण करते तब तो प्रदेश नहीं आएगा, तब कृष्ण सामने रहे। और जिस समय ये नहीं स्मरण करेंगे समझो ये बात की खांसी कलयुग पकड़ लेगा, इसे क्षमा करना ही कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े समझदार लोग ऋषि मुनि लोग स्मरण नहीं कर दिया, बलदेव जी आगे चले नहीं कार्य नहीं मिले। वहां पर पुराण की कथाएं चल रही थी, 7,000 किलो की 88,000 किलो हरी कथा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उसमें है, बलदेव जी पहुंचे, सब लोगों ने उठ करके उनका अभिवादन किया, सब लोग उठे, सब लोगों ने हाथ जोड़ करके आप उनको ले गए। किंतु वहां पर जो बैठा हुआ था फार्मर का वक्ता गोस्वामी लोहर संसू
अर्थात भगवान की कथा कहने में कभी कभी रोते तो खड़े हो जाते हैं और फिर जब कथा खत्म हो गई तब कुछ नहीं। अथवा जो वहां पर बैठे भी श्रोता है उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऋषि, उन ऋषियों को यह सम्मान नहीं देता। बलदेव जी खुद वहां पर आए, विश्व के गुरु हैं, कृष्ण के भी बड़े भैया हैं, अखंड गुरु तत्व बलदेव जी हैं, भागवत के मूल वक्ता यही बलदेव जी हैं, और उनको उसने प्रणाम नहीं किया, अभिमान में बैठा रहा। यहां तक भी नहीं कि कुछ प्रतीक्षा करें, बलदेव जी आए उनको एक माला देते अपने आसन को युक्त करके अभिभाषण करेंगे भी नहीं किया। इसलिए उन्होंने देखा कि कोई अधिकारी नहीं है पास का, ये व्यक्ति तो समझ किया ही नहीं, व्यास का शिष्य बनता है किंतु व्यास का आचरण उसने ग्रहण किया। नारद जी को व्यास जी ने जैसे सम्मान दिया ऐसे ही अपने गुरु को सम्मान देना नहीं चाहता। इसलिए जो गुरु को सम्मान नहीं दे सकता है, जो आचरण नहीं कर सकता है, वो वक्ता भागवत का वक्ता होने योग्य नहीं है। बस गले में हाथ ऐसे लगाया उसका कट करके अलग सब ऋषि योग्य बैठे थे, सब लोग हाहाकार कर आज आपने क्या कर दिया। जब हाहाकार करने जब कदल गए बोलिए बदलाव तो क्या चाहते हो, मैं कुछ भी करके बैठा दू कि नहीं कर दू ऐसा आप जो पर चाहते हैं कि तो हमको भागवत कथा सुनना है, हमें भागवत कथा आरंभ करना होगा। उसका एक बेटा था छोटा था, अब एकदम छोटा 5 वर्ष का भी छोटा है, उसका उपवास नाम था, उसको लेकर के उन्होंने उठाया गोदी पर और उठा करके व्यास आसन पर बैठा और कहा तुम्हारी समस्त जितनी विद्याएं हैं वेद उपनिषद शास्त्र भागवत इत्यादि सब तुम्हारे अंदर में स्फूर्ति हो जाए। सचमुच में समस्त उसके हृदय में स्फूर्ति हो, बोले भागवत का पाठ करो, पसंद करो से भागवत का पाठ और प्रवचन दे। ये जो उग्र सभा उग्र सभा पीछे से इसके बाद में जब परीक्षित महाराज की सभा हुई सुखदेव गोस्वामी भी भागवत उसमें व्याख्या कर रहे थे, तो वह बड़ी श्रद्धा के साथ में जाकर के उनके चरणों के समय में बैठा हुआ सब सुन रहा था। यही भागवत का पीछे से प्रधान वक्ता हुआ। इस तरह से भागवत का श्रवण करने का अधिकारी कौन है जिसके पास में श्रद्धा है और भागवत की कथा को सुन करके भागवत में जो लिखा है जैसे उसको मानने वाला ही भागवत का श्रद्धापूर्वक सुनने वाला अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति भागवत 12 दिन सुन लिया भी कल आपकी कथाएं हमारे सिर पर है, मैं तो गणेश जी शंकर जी दुर्गा जी और कौन कौन देवी में कंकाली जी हैं संतोषी मैया है, मैं उनको कैसे छोड़ू। आपकी कथा भी ठीक है किंतु हमारे मैया और सबकी पूजा देवता देवी सब 12 महीने में 13 पर्व और 360 दिन में 300 पूजन पाजन ये सब ये है तो भारत का कम काम सर्वधर्मान कर्तव्य ये काम हुआ कि कृष्ण का वर्ण कर भारत को ऐसा ये कृष्ण की इरादा जी हमारी हमारे गिरिराज जी जिसकी पूजा कृष्ण ने स्वयं की वो हमारे आराध्य है, जिसकी पूजा कृष्ण ने और गोपियों ने की वो यमुना जी जिसने कृष्ण ने इतिहास किया है यमुना की हमारी आराध्य है। ये सम्मान करके हमको चलना पड़ेगा तब हम समझेंगे हम भागवत सुना, और यदि नहीं करते तो ये समझेंगे हम एक मनोरंजन था 10-12 दिन कट गया आराम से कुछ सुन लिया बाप भाव तक, किंतु भागवत की कथा सुनने के लिए और वक्ता और श्रोता दोनों को एक वक्ता है बड़े वक्ता एमए पीएचडी है भागवत की कथा बड़े सुंदर रूप से करते हैं भाषा भी बड़ी प्रांजल किंतु उनकी इष्ट देवी कंकाली जी है वृंदावन में बैठ करके यमुना के किनारे कंकाली जी की वो पूजा करते। ये भागवत का वक्ता का यदि हाल हो तो श्रोता का क्या हाल हो। इसलिए आप तो सबके देवताओं के भी आराध्य समस्त अवतारों के जो मूल अवतारी में कृष्ण का भजन करेंगे यही आप स्वर्ण कार्य फले बलदेव प्रभु जी का यही बजे जी जब ये सब सत्य जब द्वारा में पहुंचे तब तो महाभारत युद्ध क्या समाप्त हो गया है। कृष्ण भी वहां पर आ गए थे एक दिन अपनी प्रयत्नियों को लेकर के अपनी पत्नियों को लेकर के बाली और कौन भरती जी को और उनकी सहेलियों को लेकर के पर्वत के पास में कहीं वन में गांव की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। दिलीप नाम का एक बंदर आया परिवार था है राम के युद्ध में राम की बहुत सेवा है किंतु लक्ष्मण जी को देखना नहीं चाहता उनकी निंदा किया है। राम को मानते हैं लक्ष्मण जी को नहीं लक्ष्मण जी को मानते हैं राम को नहीं ऐसा यदि कोई कहे राधा जी को मानते हैं कृष्ण को नहीं कृष्ण को मानते हैं राधा जी को नहीं ऐसा करने वाला पाखंड जी तो वो दिलीप बंदर राम की सेवा करता था युद्ध किया किंतु अंत में लक्ष्मण जी का विरोधी होने के कारण राम के विरोधियों का संग करने लग गया। कृष्ण की लीला समाप्ति के बाद में साधु जमन जरा संघ और सब उनके साथ में रहने लगा कम शिक्षा के साथ में दुखी विकृत हो अच्छा व्यक्ति भी यदि दूसरे व्यक्तियों का संघ करेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए यहां तक कि दूसरे लोगों का विषय लोगों का अन्न खाने से भी चित्त मलिन हो जाता है फिर भगवान का भजन नहीं तामसिक शरीर हो जाए। इसलिए दुष्ट लोगों के यहां इच्छा करना या दुष्ट लोगों से आदान प्रदान करना दुष्ट लोगों का अन्न खाना चित्त को भ्रष्ट कर देगा चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे उसको इसलिए देश सुनकर के किसी का अन्न खाएंगे या खाएंगे किसी को खुश रखने के लिए उसका अन्न खा लिया जरूर चित्रवृत्ति भ्रष्ट हो जाएगी भगवान का भजन दिली जाएगा किया यहां सती घोर रूप में बलदेव जी का भी विरोधी होगा क्योंकि बलदेव जी को ही लक्ष्मण क्या है वो जानता है पशु का विरोध करना है जाना उनका विरोध करता अंत में आज उसको मौका मिला जंगल में अकेले बलदेव जी को स्त्रियों के साथ में देखा वो नंगा सुखकारी कोई जंगली पर का काम करने लगा उनको चिढ़ाने लग गया बलदेव जी को क्रोध है अरे देखो तो ये भगवान का विरोध कर रहा है समझता है इसका इसको बंद करने से जिससे ये और अधिक पाप का न करे अपराध न करे इसलिए वो पेड़ पर भी अपने हल को लेकर के उसका मस्तक लगा दिया और फेंक दिया और दूसरे से ऐ मुसलमान बस वही उम्र करते थे बलदेव जी गुरु तत्व हैं बलदेव जी को बलदेव जी की कृपा नहीं होने से कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती है इसलिए ये बलदेव जी की कृपा होनी चाहिए हमारे यहां तक तो दशम स्कंद समाप्त हुआ शायद ये कथा हमारे शिवानंद ब्रह्मचारी जी ने नहीं कहा होगा कि इसलिए हमने इसको संक्षेप में बताया आप लोग इन सब चीजों को ठीक से हृदय में धारण करें आप लोगों का कल्याण होना है आप लोग संसारिक वस्तुओं में मत फंसिए कर्तव्य के लिए जो चीज की आवश्यकता है उसको ग्रहण कीजिए किंतु भजन करें राधा कृष्ण का ही यही भागवत बार 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 ये कहा दूसरी बात लोगों को शंका होती है द्वारका लीला के अंत में वो जगवंशियों का ध्वंस हो गया उसमें सब लोग मारे गए और कृष्ण के भी पैर में पान लगा वो भी मर गए उनका संस्कार वहां पर हुआ यहां पर राजकोमनाथ जी का मंदिर है वही वाराणसी में एक पेड़ के नीचे कृष्ण बैठे हुए थे और एक पहेलिए ने उनको बाण मारा वह बाण कौन सा था वो अभी सप्त ऋषियों का सप्त मूसल से बना हुआ कैसा जब उच्च घराने में किसी का जन्म हो जिसके माता पिता खुद धार्मिक हो किंतु उसके करने भी दुष्ट लोग हो सकते हैं जिस प्रकार से परम दलित दानव जो थे हिरण्यकश्यपु उनके घर में आए प्रहलाद महाराज और प्रहलाद महाराज का बेटा कैसा हुआ
विरोध
और विरोचन का बेटा कैसा हो गया महाराज भक्त हो गए ऐसा होता है। तो आप लोग सावधानी के साथ में उच्च घर में आए पर माता पिता के भी धार्मिक हो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को सीख करके और वैसे भी चलने की चेष्टा। तो कृष्ण के कुल में जगवंशी लोग आए कृष्ण ने दो भाग धारण करके महाभारत के युद्ध में सब जितने अपकारी थे दुष्टों का जो दल था वो सबको मारा लाखों लाखों लोगों को मर रहा है अपने मारा ही मर्जी से मारा है परस्पर लड़ कर करके मर इसलिए धर्म की प्रतिष्ठा के लिए तो धर्म की प्रतिष्ठा क्या हुई से तो भागवत उस समय से बर्बाद हो गया नहीं बर्बाद नहीं हुए दुष्ट लोग का संघात और धर्म के प्रवृत्ति वाले लोग अपना धर्म चले तो ऊपर से देखने से मालूम होता है कि हमारा स्तर कुछ बर्बाद हो गया था बाल विद्या चली गई तो बाल विद्या की जरूरत क्या थी अभी यदि संसार से आतंक बम और नाइट्रोजन बम इत्यादि सब बर्बाद हो जाए कभी नष्ट कर दिए जाए तो अच्छा है ऐसे दुष्ट लोग चले जाए भगवान का भजन करने वाले रहे वैसे भी व्यक्ति यही करती किंतु उन्होंने देखा आप हमारी विद्या समाप्त कर दी अब जो साधारण लोग हैं उनकी दृष्टि में हमारी लीला कैसे समाप्त हो हमारे जो साथ में आए हैं परिकर वो गोलोक वृंदावन या ब्रज से या द्वारका से आए हैं बैकुंठ से ये तो अजर अमर है हमारे लिए अब ऐसी लीला कोई दिखलानी चाहिए जो साधारण लोग समझे या लड़ कर करते मरे किंतु इसी लीला के माध्यम से वो लोग वृंदावन में चले गए लोग समझ नहीं पाए लोगों ने समझा जब लड़ कर करते मरे इसलिए अपनी जो माया जो थे संविद्यालय उनको कुछ प्रेरणा दी और प्रेरणा देने पर ये लोग जहां सोमनाथ का मंदिर है क्या वो जगह प्रभात वहीं पर ऋषि आश्रम लोग चातुर्मास का व्रत मना रहे हैं जिसमें नारद भी है दुर्वासा ऋषि है कभी कभी इत्यादि है बड़े बड़े संतों का समावेश हुआ बड़े आनंद से उनका सत्र हरि कथा का जैसे यहां चल रहा है वहां पर चल रहा है कुछ दंड लड़के दंड का सामना ये कृष्ण के तो बेटे हैं ना इनमें नहीं हो सकते किंतु गुरु माया को दिखला रहा है जैसे आजकल बहुत दंड लड़के बंगाल में तो अत्यंत साधु संतों को देकर के कहेंगे ये कौन है ढूंढे जाए लड़कियां तक भी छेड़ेंगी उनको आप धीरे धीरे पहले यहां था कि साधु संतों को जाए जय श्री राधे 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 करते थे कुआरे राधे राधे करते चौकदार सब राधे राधे करते थे सभी वातावरण राधे राधे करते अब जमाना धीरे 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 अब हमारे बच्चे लोग नगर संकीर्तन में जाते हैं तो कुछ कहते हैं कि नहीं रिलायंस सिंह की जय और रिलायंस सिंह की जय और गुलाम सिंह राजे ने कहा चले अब लोग छेड़खानी करने लगे अब राधे राधे नहीं करते अब लोग मायावती या क्या क्या कहेंगे माया देवी की जय और माया तो इस तरह से जमाना पलट रहा है इसको दिखलाने के लिए अपने पुत्रों के द्वारा ही उन्होंने दिखलाया कृष्ण के जैसे पाठिन परकर है ये अज्ञानी बनकर के कृष्ण से गीता का यह सुना ऐसे ही जैसे परीक्षित महाराज कृष्ण के परकर हैं वो मनशील मनुष्य जैसे अपने करके श्रीमद भागवत को श्रवण किया लोग समझ नहीं पाए थे परीक्षित महाराज को उसी तरह से शाम इत्यादि को एकत्र करके भेज दिया वो दंड होकर के शाम को लड़की सजाया बड़े सुंदर थे बस लड़की सजा दिया कुछ केस भी बड़े बड़े थे उन्होंने केस को इसे ढक लिया और 16 श्रृंगार करके ले गए केस को थोड़ा सा ऊंचा बना दिया ये गर्भवती जाकर के सब लड़के दंड ऋषियों से बोले महात्मा जी आप लोग तो सर्व हैं
যারা ব্রাহ্মণ দিয়ে দলিত বেটি ব্যা করতে আই হ্যাঁ ইসকো পড়া তো আপনার কি ইসকো বেটা হোক কি বেটা বেটি হোক হম লোক বহেজ কে লিয়ে কৌতুক ঘর বালে ভি বহেজ অসমঞ্জস মে কিসি নে কাহা কি আজ বেটি কিসি নে কাহা যে বেটা হোক মুসল নিকলেগা আর এসা তেসা নেই মুসল তুমারে যোধপুর ধ্বংস করকে বরাবর কর দেগা এসা হো জলদি সে গে ইধর যা করতে শাম কো শাম কে হওয়াই মুখে সাথীয় কে লিখে ভাই পেট খোলো জলদি সে কপড়ে খোলা উপর মে তবা বান্ধ করতে রক্ষা থা কপড়ে নিচে করতে তবা কো জমি হটাযা নিচে সে মুসল ইতনা বড়া গির গিয়া মুসল আপনি জানতে হ্যাঁ কি নেই আজকাল তো মুসল কে উপর সব গিয়া হ্যাঁ আজকাল ইতিহাস খাটতি নেই বস মেশিন খরিদ লিয়া হ্যা চাকরি পর আটা দে আয়েন বস হো গিয়া ব্লড প্রেশর সে পরিশ্রম করতে কোন রোগ নেই আসে মুসল মে নেই জানতে মুসল হতা বহু লম্বা তিন হাত চার হাত কাজ বহুত কে লকড়ি কাজ বহুত মজবুত আর লোহে কাজ উসমে উসে ডাল চাল গেহু অসব চিজে করতে রসোই কে লিয়ে উপযুক্ত বনা করতে আর করতে সিটে অলগ কর দিয়ে যায় বস ও কতনা সা মুসল আর উসমে লোহে লগা হুয়া নিকল করতে দিয়ে পড়া অফ ডর গে ये तो सत्य का है बस उग्रसेन महाराज की नजर है उग्र प्रश्न मारे आई तुमने क्या किया कृष्ण से अपना ये तो बात तुमने गलत किया अब तो हमारा धन होने वाला है तो जाते बस तो मुसल्ला उसको लेकर आपने नौ हुक्म दिया अच्छी तरह से इसको जला दो मुसल्ला उन्होंने हाथ जला करके और उसको जला रात को एकत्रित कर लिया अब आ गया लोहा लोहा को खिंचवाया तो भीते 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 कितना आकार आ गया जो हाथ में नहीं जाए और पिकड़ी सी बन गए इधर से दिशा उधर से दिशा और वो तीन कोना एक छोटा सा पतला सा एक लोहा अब वो हाथ में पकड़ में नहीं आया उन्होंने कहा इसी फैलाओ लेकर के एक नदी में समुद्र में एक नौका में बैठा करके रात और ग्रोहे का चिन्ह लेकर समुद्र किसी का उद्धार नहीं लेता है चलिया उसने जितना जो कुछ था बाद में से किया किनारे लग गया और उधर गए लोहे को एक मछली में खा अब वो सकंडा ऐसा बना लोहे से भी अधिक रुखड़ा काटने वाला और इधर में वो मछली पकड़ी गई एक बहन लिए नहीं पाया और बहरिए ने उसमें लगा दिया अपने स्तर में लगा दिया कृष्ण दिखाते चाहिए तो द्वारका में बड़ा उत्पात मच रहा है बादल नहीं है बालू बर्ष है कौवे गांव गांव कर रहे कुत्ते रात में रोते हैं एक साथ मंडली बांध कर जब अनिष्ट होना होता तो ऐसा ही होता उस समय में गाय होने लग गए मुर्गियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं जबकि अनिष्ट होना हो तो ऐसे सब देखते जाएंगे उस समय कृष्ण ने कहा जब लोग चलो हम वहां पर जाएंगे प्रभाव से और वहीं पर दान पुण्य करेंगे और ठाकुर जी की शंकर जी के लिए आराधना करेंगे समान अनिष्टों के मूल में बने हैं इसलिए उनसे हम प्रार्थना वहां पर गए समुद्र में स्नान किया बहुत दान इत्यादि सब लोगों ने दिया देने के बाद में थोड़ी सी बुराई तो किए मदिरा मदिरा पान किया मैरे और उसके बाद में कृष्ण तो अलग होकर के चले गए बलदेव प्रभु भी आगे ही चले गए और वो जाकर के पेड़ के नीचे विचार कर रहे हैं और उस समय में उद्धव मैत्रेय को उन्होंने श्रीमद भागवत की कथा सुनाई और इधर में बैठे थे बहलिए ने पलटने में लड़ कर करके जीतने थे और कृष्ण वहां पर तो उनको बहलिए ने बाण मारा उनको लगा और वो यहां पर ये बात है न तो ये युद्ध हुआ न तो कृष्ण को बाण लगा न तो कोई किसी से लड़ा सब लोग अपने गुरु धाम में या जहां जहां से जो भगवान के परिकर आए थे जो भगवान के परिकर थे अपने अपने लोगों को सत्तरी के चले गए किंतु यादाश के लोगों को मालूम नहीं पड़ा कैसे किसी को दिखला है टीकाकार ने दिखा या भागवत ने दिखा साधारण मनुष्यों ने देखा कि भाई कृष्ण को बांध लगा घायल हो गए और अंत में शरीर छोड़ दिया है जो मध्यम प्रति के लोग थे देवताओं ने देखा कि कोई एक तेज निकल करके आकाश मार्ग में जा रहा है और जो सिद्ध महात्मा थे ब्रह्मा शंकर और उसी नारद इत्यादि कृष्ण ससरी इन परिकरों के साथ में बोलो वृंदावन में जा रहे उन लोगों ने ठीक देखा पीछे वाले लोगों ने एक आकाश की ज्योति सी देखी और साधारण लोगों ने ये सब कुछ नहीं देखा उन्होंने लगा ये फिर लगा इन लोगों ने लाकर मार की थी और उन्होंने ये बतलाया कि देखो एक राजा उसकी रानी थी उसके बच्चे एक दिन एक नाक फिर तमाशा देने के दिखलाने के लिए अपनी खेती और दो बच्चों के साथ में उसकी राजधानी में आया राजदरबार ने कहा गया बोलिए प्रभु आप आदेश दीजिए आपको खुद सुंदर सी खेल दिखलाए अजहा दिखलाओ तो उसने दो बात को गाड़ दिया और उस पर रस्सी टांग दी दोनों तरफ में खूटे गाड़ करके उस रस्सी को उसके ऊपर में खड़ा और वह स्वयं ढोलक बजाने लगा और उसकी स्त्री सीट पर एक घड़ा उस घड़े के ऊपर में एक और खड़ा उसके ऊपर में एक और खड़ा लेकर के झटसे न जाने कैसे उसी रस्सी पर से उसके ऊपर में पहुंच गए हाथ में एक डंडा दे दिया और उसी पर नृत्य करते हुए कभी उधर से उधर जाती है और उधर से इधर आती है गिरती नहीं और न खड़े गिरते हैं ये करते ताली बज गई और सब लोग हाथ हाथ करने लगे रानी ने अपना एक सुंदर सोने का नौलखा हार निकाल करके उसको जब आई नदी नदी के गले में पहना पढ़ाने के साथ उसके दोनों लड़के 8 और 9 वर्ष के थे बड़े सुंदर स्वस्थ वो दोनों आए मैया हमें दे छीनने लगे मैया ने गले से निकाल लिया और छोड़ दिया हाथ अब वो अपनी तरफ में जब देखा जैसे ये नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा है दोनों भगवान बराबर के हैं बच्चे कोई किसी से छीन नहीं पाता तो दोनों ने एक साथ में अपनी म्यान से तलवार फेंक ली और उसने उसको और उसने एक साथ में ऐसा तलवार मारा दोनों के गले उसने उसको काट दिया इसने ऐसा दोनों ही रुंडमंड की नहीं हाय हाय ये क्या हो गया हमारे बच्चे मारे गए दब की भी आई और एक बच्चे की तलवार लेकर के अपना गला काटा इसने पति ने देखा अरे ये क्या हुआ हमारी स्त्री भी मरी बच्चे भी मरे और मैं अकेले आ रहा करके क्या हुआ दौड़ता हुआ एक बच्चे का वो तलवार उठाया और अपना भी गला काट करके वो वहां पर एक धम्मासन छा गया ये क्या हो गया यहां पर सुंदर खेल चल रहा था सब ताली बजा रहे थे और यहां पर ये तमाशा हो गया बड़े दुखी हो गए थोड़ी देर के बाद उसको फेंकवा दिया इसके बाद में बड़े दुखी थे 2 दिन के बाद में राजा के पास में रानी के पास में एक लेकर आया महारानी जी आपने पहला खेल देकर के हमको तो आपने 9 लाख हार दिया वो मुझे मिल गया किंतु अंतिम जो खेल देख लाए हम लोगों ने आपने कुछ उपहार नहीं दिया न हमारे बेटे मारे न हम मारे न हमारे पति हम लोग खूब राजी खुशी हैं अब इस खेल का कुछ पुरस्कार चाहिए आपको यदि विश्वास न हो तो हमारा तरीका ये ठिकाना है, आपके राज्य के पास ही में रहती है, आप आ जाए, आपका स्वागत। राजा रानी बड़े प्रसन्न भए और उन्होंने रथ पर चढ़कर के ये देखने के लिए सख्त बात है कि दूत वहां पर गए, देखा कि मुस्कुराते हुए वो नदी अपने बच्चों को और पति को लेकर के रानी को फूलों का गजरा लेकर के स्वागत करने के लिए खड़े हैं और कह रहे हैं हमारा पुरस्कार कहाँ है रानी साहिब का, ये देखते आश्चर्यचकित हो। यदि यह नट एक ऐसा कर सकता है तो जो नटों का भी नटों का वो नट है कृष्ण है, वो नहीं दिखला सकते माया से, नहीं दिखला सकते, वो तो नटवर है ना, उस माया के मालिक है, जादू मंत्रों के भी मालिक है। अरे मथुरा में भी कुछ दिन पहले गई जयंती में जहां पर किसी का बाजार बनाए वहीं पर कलकत्ते के वो जादू जादू वाले आपूर्ण आया था, वो तो आकर के दिखला रहा था, दिखलाया क्या, एक बड़ा भारी लोहे का संदूक रखा और उसमें ताला 8-10 बड़े बड़े आए, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहां के एसपी और सब लोग आए हुए थे। उसने अपने बच्चे को सुला दिया और तलवार निकाली या छुरी और चाकू निकाल करके कपड़ा काट दिया, देखते देखते कपड़े के अंदर रख करके सर ये क्या कर रहा क्या कर रहा, वो पूरे दम से परवा गलानी काट दिया और ऐसे ऐसे होने लगा मरा मरा मरा, इसके बाद में सब लोग समझ गए गला काट दिया और गला को निकाल करके अलग से और बक्से में बंद कर दिया लूहे को। मजिस्ट्रेट से कहा जिसे आप ताला बंद कीजिए और चाबी अपने पास रखिए, एक ने 4-5 ताले लगवा दिए बड़े बड़े, लगाने के बाद में अपने कहिए अब क्या करता है, उन्होंने कहा अरे बेटा जरा आना तो बेटा आ जाना तो तुम्हारे पिताजी में आगे आ गया जी करते जो करते जो यदि ऐसा हम लोगों ने यहां पर देखा और वो कितनी जादू की बातें हैं कितना कम, एक जादूगर सामान्य अपने रोटी के लिए रोगी के लिए ऐसा कर सकता है उनको प्रभु नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण को कोई नहीं पा सकता। कर्ण का बाण जिनको भीष्म का बाण जिसको काली नगर नाक के एकदम बीस का उठ बीज बिल्कुल यहां यहां चारों तरफ पर काटा और उसमें डूब गए और नहीं मरे, जिन्होंने आपको खा लिया नहीं मरे, जिन्होंने गोवर्धन को धार किया और नहीं मरे तब करके जो कि जंपुर में चले गए समुद्र को पार करके और तमाम अंधकार और पृथ्वी को और 8 आवरणों को पार करके महाकल जानपुरी में जाकर के जिसका कुछ बचा हुआ नहीं था हार भी नहीं था और उसको वहां से लेकर के अपने गुरु जिनको वो अपनी गुरु मैया को दे दिया। आपने सुना जिन्होंने उनके देवती के 6 पुत्रों को कितना दिन हो गया है और उनको फिर से बुला करके देवती का दूरपान कराया और फिर कोई कृष्ण का चिंता होने की वजह से उन लोगों को जन्म स्पर्श किया कहीं पुत्र होकर के चले गए। ऐसे कृष्ण को कोई मार सकता है, ऐसे कृष्ण को परिकरों को कोई मार सकता है, इसलिए कृष्ण की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो लोक माया के द्वारा होती हैं जिनकी हम लोग कुछ समझ नहीं सकते कि इसलिए कैसे क्या कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण की अंतर्ध्यान लीला को इसी रूप में समझेंगे। वहां पर कोई युद्ध मारकाट नहीं हुआ, वो तो घर की जाती थी, उन्होंने ऐसा दिखला दिया और सब परिकर सहित में वहां चले गए। इसी तरह से बहुत सी लीलाएं हैं, समय के अनुसार मैं वर्णन करूंगा, हमारे लिए कुछ निषेधाज्ञा ही है कि अधिक मत बोलिए, तो उस निषेधाज्ञा को भी मैं शुरू करते हुए थोड़ा सा होगा, अब शायद 10 बज गया है, समय भी हो गया है, आज शाम को आप लोग 5 बजे आ जाएंगे, जैसे 5 से 6 बजे तक हमारी कथा 25 पैसे चलते हैं, जो हम इस कथा को समाप्त करके थोड़ी सी कथा रखते हैं कल के लिए सवेरे के लिए। आज हम लोग 6 बजे करीब हम यहाँ से रथ यात्रा कृष्ण बलदेव और जगन्नाथ जी को लेकर के यहाँ से सीधे होली गेट में भीतर जाते हुए वहां से विश्राम घाट और यमुना के घाटों से होते हुए आज समाज रोग से परिक्रमा करते 8 बजे के पहले ही आने की चेष्टा कर यहाँ पर प्रसाद लेकर के तब फिर अपने घर में जाएंगे और कल फिर हम लोग जैसे रोज होता है 7 बजे से जैसे आरंभ होता है वैसे ही भागवत आरंभ होगी
कुछ का कुछ जो बाकी रहेगा अवशिष्ट करके पूरा करके और तब यहाँ पर हम लोग अमन इत्यादि कार्य करेंगे। अमन इत्यादि का कार्य होने के बाद में सब अपनी भागवत की ये हम करेंगे आरती उतारेंगे, इनकी पुष्पांजलि देंगे और ये भागवत भी हमारे हृदय में रहे सदा के लिए इसकी प्रार्थना करेंगे और तब हम लोग कुछ प्रसाद की व्यवस्था करेंगे और प्रसाद को थोड़ा बहुत लेकर के आप लोग तब फिर अपने घर में जाएंगे और सदा के लिए इस भागवत को अपने हृदय में रखेंगे। हम लोग यहां तक चर्चा करते हैं कि आजकल कथाओं में भी साफ नहीं, ऐसी हमारी कथा न हो, पैसे का कोई प्रश्न न रहे, पैसों के लिए भागवत को बेच देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग तो चाहते हैं आपका हृदय ये पुष्पांजलि के रूप में लेकर राधा कृष्ण के चरणों में सदा के लिए अर्पित करते हैं। आप लोग ऐसा ही तैयार होकर के यही पुष्प लेकर के आएंगे जब आते हम लोग राधा कृष्ण की हो गई या हो गया भजन करते हैं या कृष्ण के जो अवतार हैं राम इत्यादि हैं उनका भजन करना भी कृष्ण का ही है, किंतु फिर भी कृष्ण की लीला का कुछ वैशिष्ट है। अभी तक हम लोगों ने इसका वर्णन किया है, आप लोग इस चीज को हृदय में रख सकते यही पुष्पांजलि ले आएंगे और कृष्ण के चरणों में ये भागवत स्वयं कृष्ण है यहाँ पर गिरिराज भी है, आप उनके चरण में पुष्पांजलि देकर के हमारा यह भागवत कथा का स्वागत इनका सत्र समाप्त होगा। गौ प्रणामे
मुक्ति मुक्ति के उपाय करू निर्मनाम संकीर्तन को दिखाया कि तत्वा उद्धार होने के लिए एकमात्र हरे रावण इस प्रकार वर्णन करते भागवत आदि का वर्णन तृतीय स्कंद में सृष्टि कृत्य का वर्णन करते हुए कपिल देव ने संवाद दिखाया जिसमें संसार की सृष्टि रचना को दिखाते हैं उससे बल्ला को भगवान के चरणों में भक्ति चतुर्थ स्कंद में धर्म अर्थ काम मुक्ति का वर्णन करते हुए पुरुष उपाख्यान के द्वारा नवृत्ति मार्ग की ओर ले गए। पंचम स्कंद में स्थान विश्व ब्रह्मांड के जितने भी स्थान है भगवान का दिव्य लोक है उन समस्त लोगों का वर्णन करते हुए अप्राकृतिक धाम प्राकृतिक जल धाम के प्राकृतिक वैभव भगवान गांवों में अपने गणना करते सबकी रक्षा करते भक्त चरित्र में भरत महाराज के उपाख्यान के द्वारा भवा कवि इस संसार का चित्रण करते हुए उससे एक और वैराग्य पूर्ववर्ग के चरणों में भक्ति इस प्रकार से पंचम स्कंद में पैदा हुआ। छठवें स्कंद में पुरुष अपने नामों के द्वारा समस्त विश्व जगत के प्राणियों की रक्षा करते हैं और यही उपाख्यान के द्वारा दिखाया जो हम सब की जो धारणा होती है सरकार में हमारे रक्षक कितने हैं पर कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। साथ में ये ग्रंथि से त्रुटि विच्युति से जब कोई रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे अजामिल को कोई रक्षा नहीं करने पाया और भगवान राम जो कि अजामिल सारी गलतियों को करते हुए पाप कर्म नायक मतलब से भी एक दूसरे के लिए किया तो उससे भगवान ने उनकी रक्षा की। इस प्रकार भगवान कैसे दयालु है कैसे रक्षक है ये समझकर राम की महिमाओं को दिखाया। उपाध्यान के द्वारा भी एक असुर पुल में जवाब देकर के कैसे उनके अंदर भावना प्रेम गोपियों का ये गोपी भाव का एक जीवन काम समारोह का एक विशेष लक्षण के रूप में दिखाया है। सप्तम स्कंद में मौतों के अनुग्रह से असुर पुल में जवाब लेकर के प्रहलाद महाराज कैसे महाभागवत कर रहे हैं और वैकुंठ के द्वार पर जय किया असुर कुल में कैसे उत्तर आ गए ऐसे कर्मों की जो उच्चावत गति है मौतों का परम अनुग्रह ये समस्त दिखाया गया बहुत अनुग्रह उसी कर्म प्रार्थना को दिखाया। अष्टम स्कंद में भगवान मनुष्य अवतार के रूप में कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं देवदानवों के विवाद को समापन करते हुए बलि महाराज को अपनाया इस प्रकार उनकी भक्ति ये समस्त देखा है। नौ स्कंद में सूर्य वंश चंद्रवंश के द्वारा जिस वंश को भगवान ने अंगीकार किया है ऐसे उनके वंशावली चिंतन किया है उन वंशों के राजा महाराजाओं का महत्व पावन चरित्र ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार नवो स्कंद विज्ञान और प्रजाति की बात बात है, दसों स्कंद जो समस्त भक्तों के लिए मात्र आश्रय है, दसवें दसमो लक्ष्म आश्रम आश्रय विग्रह श्रीकृष्णाक्ष परम भाव जय धाम कृष्ण श्री कृष्ण के उन्हार बिंद जो समस्त भक्त जनों का आश्रय है, ऐसी दसम स्कंद की कृष्ण की लीला कथाएं जिन्हें 125 वर्ष तक इस जगत में छाती में गुरुवार ने अपने लीलाओं को प्रकट किए हैं, ऐसी लीला आस्वादन करना ही समस्त भक्त जनों का एकमात्र आश्रय है, यही कर सकते हैं। इस प्रकार ग्यारहवें स्कंद में कृष्ण लीलारत का कैसे आस्वादन हो, इस जीवन को कैसे भक्तिमय भावमय बनाया जाए, तो श्री नवजीवेंद्र संवाद के द्वारा कृष्ण उद्धव संवाद में इस समस्त कथानक को प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन को भागवतमय बनाए और उसी प्रकार अपने जीवन को ढाल दें, भगवान की भक्ति में डूब जाए और डूबते हुए प्रभु के लीला कथाओं का स्मरण करते हुए अस्तुम से धर्मांश परिवार अस्त साथी भाव का बुराए उनके जनों में प्रेम बुराए हों, उद्धव को दिखाया कि उद्धव श्रुतियों में शास्त्रों में विधि विशेष मेरे द्वारा कहे गए धर्म अधर्म ये सब को तुम परित्याग करूँ, इन मात्र गोपियों के भाव में डूब कर सर्वात्मो भावे न जाए शरणम सर्वत प्रकार से गोपियों के चरणों में शरण हो और उनके भाव में डूब जाओ, यही निबंधा था। इस प्रकार के कारण चंद में अंत में उपसंहार करते हैं कहा हे उद्धव जो भक्त सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर मेरा भजन करते हैं, मेरा भजन करते करते एकांत रूप से जब सर्वस्व समाधान कर देते हैं तो मैं भी उनको अपना लेता हूँ, एक इस शरीर से छुड़ा कर मैं शुद्ध आत्म स्वरूप से मैं अपने पास ले लेता हूँ, उसको अपना परिकर बनाकर उनके प्रेम रस सेवा को मैं ग्रहण करता हूँ, प्रेम रस के आस्वादक बनाकर इस प्रकार देव आदर करता हूँ। ऐसे ऐसे कहते कि राजस चंद्र ने प्रलय का वर्णन किया, संसार का प्रलय होता है, उस प्रलय के बीच में कभी युग में कैसे काल के द्वारा प्रभावित होकर मनुष्य भटकते हैं, परंतु ये मनुष्य आज के युग में सावधान हो जाए और भगवान के नामों का कीर्तन करें, करते करते इस संसार को पार हो जाए चलेगा। इस प्रकार श्री सुध गोस्वामी जी कहते हैं समस्त शास्त्रों का सार है भागवत, क्योंकि निष्काम विशुद्ध प्रेम का वर्णन करते हैं। श्रीमद भागवतम पुरा अमल जद वैष्णव प्रिया जस्मिन् पारमहंसले ममल ज्ञानम परम कीयते जत्र ज्ञान व्याज भक्ति नैष्कर्म महाविस्कृतम् तस्मिन्नं सुपथं विचारो परोभक्त्या विमुच्यन्नरः।
चला गया सत्सुम की पंचा कल्पतरुभ्यं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवतिषे गुरवे गुरुचन्दाय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्रजं तमनुते तमपेतकृत्यं द्वैतायनो विरहसातर्याभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्
श्रीमद्भागवत की कथा संपन्न हुई।
निर्देश रूप से। हम इसके संबंध में दो एक बातें आप लोगों को कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि भागवत समाप्त होने पर जब भी सुखदेव गोस्वामी वहां से प्रस्थान कर गए और उनको जो कुछ निर्देश देना था उन्होंने दे दिया, तब परीक्षित महाराज जी मौन हो गए और कृष्ण सीता ने लवलीन होने वाले थे इसमें उनकी मैया ने कहा उत्तराधी ने, बेटा मैं इतनी जाती हूं मेरे दुख भी बहुत कम है, सुना तो जरूर किंतु मैं पूरी बात को नहीं समझ सकती, इसलिए संकेत से इसका साथ हमको न सुना। उस समय ये वो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि मौन की अपेक्षा समाधि से अपेक्षा कृष्ण लीला का स्मरण करना और उत्तम है, इसलिए वो भगवत चिंतन छोड़ करके अपनी मैया को जो उस समय सार में श्रीमद भागवत का जब सार समझाया उसी को बृहद भगवतामृत कहते हमने उसका यहां पर एक वर्ष से यहां पर हमने उसका पाठ किया, बल्कि दो बार किया और थोड़ा सा बाकी है उसको फिर से हमने आरंभ किया है, उसको कहते हैं भक्ति रहना है। इस प्रकार से सुनाने के बाद भी मैं इधर सुन रहे थे और कितने ने इधर किया होता है कली वहां से चला शब्दों जिसको उनको प्रार्थना था
सब सब
जब वो चला तो उसने काले ब्राह्मण का रूप बना लिया और उसका नाम उसी समय में एक कश्यप नाम का और सभी किसी अन्य देश जिसको कहते हैं हनुमंतरी कश्यप उनका नाम था, उनका उपाधि है हनुमंतरी, वो वहां से चले। आज परीक्षित महाराज के सभा में जाएंगे और परीक्षित को सख्त काटेगा और मैं उनको बचा दूंगा, पूरी तैयारी गण गोपियों के साथ में मंत्रों के साथ में वहां पर चले। इतने में वो काला मुस्तंड कली वस्त्र का उच्चारण करके उनके पास में आया, वो भी ब्राह्मण का ही उच्चारण करके उनके पास में आया, बोले आप कहां जा रहे हैं महात्मा जी? मैं जा रहा हूं परीक्षित के, इसलिए वहां पर साथ काटेगा उनको और मैं उनको कर दूंगा। अरे आप नहीं कर सकते, मैं कहता हूं तीन बार कहता हूं आप नहीं बचा सकते, मैं तीन बार कहता हूं कि बचा लूंगा। अच्छा तो मैं ये बरगद का एक बड़ा विशाल पेड़ है, मैं उसको काटता हूं तुम उसको बचा दो, अच्छा ठीक है काटो, बस अपने पूरे देह के साथ में पूरे बीज के साथ में अब उसके जड़ में एक ऐसा छोबल मार और मारते ही क्षण मात्र में वो पेड़ एकदम सूख करके जल करके खाक हो गया, उसकी जड़ भी जल गई। उनके तरफ ने देखा बच्चे की तरफ में और उन्होंने कश्यप जी ने अपनी थैली से निकाला जड़ी बूटियों को और पीस करके और मंत्र के साथ में अपने हाथों में उन्हें लेकर के तरल पदार्थ उसकी जड़ में फेंक दिया और जड़ में फेंकते ही उसमें से नई कोमल निकली, बरगद का पूरा विशाल वृक्ष हो गया और किस जैसा था वैसा ही हो गया। कहते ये तो बच्चा लेगा, अब क्या किया जाए? ऋषि ने ऋषि के लड़के ने साफ किया जरूर तक्षक डांटेगा और मरेगा तो ये बात मिथ्या हो जाएगी। उन्होंने सोने के थाल में असक्तियों से भरी हुई उनके सामने लेकर कर रख दिया, अरे जा रहे हो वहां से तो रुपये ही तो मिलेंगे, तो मैं भी तुमको रुपया दे रहा हूं ये सोने असक्तियों से ये ले जाओ। उन्होंने सोचा जैसे लूं कि न लूं, इतने में दूसरी थाल उनके सामने रख दिया, मुख से पानी निकल आया और लोगों को नहीं संभाल कर सके और कहा उन्होंने समझ लिया और वहीं से वो लौट करके चले। सब इसके बाद वहां पर पहुंचा और एक माला ने छोटी सी एक कोई ऐसा होकर के उसमें प्रवेश किया जो उनको परीक्षित महाराज के गले में गई और इसी के पहले उन्होंने कृष्ण को में और राधा जी के चरणों में अपना चित्त लगा दिया, शरीर से अपनी आत्मा को निकाल लिया, ब्रह्मांड में ले आया और ब्रह्मांड से निकाल करके राधा कृष्ण के चरणों में ब्रज में उन्होंने लगा, उनका शरीर एकदम सूख करके वो एकदम काटा हो गया। इसके बाद में उसी स्थिति में लोगों ने समझाया कि परीक्षित महाराज आए, क्योंकि उन्होंने शरीर को पहले ही छोड़ दिया और कृष्ण के चरणों में वो चले गए। इसके बाद में उस तक माला में प्रवेश करके वहां पर आया और फिर तक्षक का रूप धारण करके सब लोगों के सामने इस शरीर को जो मरा हुआ था उसमें दर्शा और वो एक स्थान मात्र में जल करके खत्म हो गया। लोगों ने समझाया कि परीक्षित को काटा, किंतु काटा किसको? उस मट्टी को काटा, उसको स्पष्ट नहीं कर सकता। यदि प्रहलाद महाराज जी को मीराबाई को एक बीच कुछ नहीं कर सकता तो इनको परीक्षित महाराज जी को जो सात दिन तक भागवत की कथा सुनी जिसको सुन करके और सब लोग विमान के सहित में बैकुंठ में चले गए, ये मर जाएंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज जी की मृत्यु नहीं हुई, वो तो कृष्ण के परिकर थे, वो भागवत को इस जगत में प्रकाश करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रकाश किया और लीला संवरण, इसलिए वो मरे नहीं, आज भी वो अमर है। इसलिए जो भगवान की कथा सुनता है कभी अजर अमर नित्य शाश्वत और इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप लोग भी कभी मरेंगे नहीं, आप लोग भी कभी मरेंगे नहीं। जो भागवत की कथा यदि सत्य में सुना है और इस कान से इस कान में निकालने दिया जरूर कभी नहीं मर। दूसरी बात, एक चीज का स्मरण होता है, महिलाओं की संख्या देखकर के पुरुष लोगों को भकनते भकनते महिलाओं की भक्त महिलाओं की भीड़ ने उनको एक कोने में फंस दिया, और इधर एक कोने में रह गए थोड़े से केवल है, केवल महिलाओं भक्त महिलाओं का देख करके उनको याद आता है। कृष्ण जी जगत में आदि दुख हुए थे, इसलिए जगह जगह ही धर्म अवसर दिलाने में बहुत भारत धर्म की स्थापना करने के लिए और असुरों को मार करके पृथ्वी का भार हरण करने के लिए महाभारत युद्ध में कितने अक्षौहिणी लोग मरे?
18।
इनमें एक महिला मरी क्या? कोई महिला मरी थी? न पुरुष मरे, और कालजवन के युद्ध में जरासंध के आक्रमण में 18 बार में युद्ध में कोई एक महिला मरी? मरा कौन?
पुरुष लोग मरे।
तो ये पुरुष पृथ्वी का भार कौन था? पुरुष रूप में दैत्यता जो कि भगवान का पता नहीं सुनते हैं। इतनी शक्ति परिकर्ता यहां हो रही है, महिलाओं महिलाएं आ रही हैं, अभी पुरुष लोग हैं किंतु बहुत संख्या में कम। कथा का आयोजन भी महिलाओं ने ही किया, पुरुष है किंतु प्रत्यक्ष रूप में वही है मूल उद्योगता हमारी प्यारी देवी क्या है?
विमला संधि,
विमला देवी, और इनके संबंध से इनके जीजाजी और उनकी बहन बहन और इनके संपर्क से और सभी सभी लोगों का सोचो भाई इनकी लोगों का नहीं है, इसे पुरुष महिलाएं जो भी हैं एकत्रित सभी का है, किंतु महिलाओं का ये देखता हूं। कृष्ण लीला थी, पशुओं का तो संहार किया, और दूसरा एक और कारण था आने का, क्या? वो रसिक से खरा रस आस्वादन करना होता है। जोशुदा जी से बात्सल्य और नंद बाबा से बात्सल्य किया, किंतु नंद बाबा के बात्सल्य से जोशुदा जी जो महिला है भक्त है उनका प्यार कृष्ण के प्रति बहुत अधिक है, वजन नहीं किया जा सकता। और कृष्ण के सखा लोग हैं सुदाम मधुमंगल सीताराम इत्यादि, और इधर में कृष्ण की सखियां हैं ललिता विशाखा इत्यादि से, सखा लोग कृष्ण की बहुत सेवा करते हैं, और उन्हें सर्वोत्तम सखाओं की सेवा क्या है? किसी को जरी ब्रज में गोपियों को मनाने के लिए भेज दिया तो कभी गोपी को कहा कि तुम जाओ सखा को मना लाओ? इसलिए सखाओं से भी गोपियों का प्रेम का महत्व बढ़े, इसलिए कृष्ण रस स्वादन करने के लिए जो आए सखाओं के साथ में रास नहीं हुआ, सखाओं के पास में भ्रमण गीत नहीं हुआ, भ्रमण बन करके नहीं गए। किनके लिए आए भ्रमण बन करके? किनको मनाया? स्मरण खंडान मम शिरसि मंडलम एक ही पद पौलम होता है। ये किसको कह रहे हैं? किसी को और किसी को? इन गोपियों के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमद्भागवत जो है ये राधिका के लिए किया गया। कृष्ण का राधिका के प्रति जो भाव है जो किसी भी शास्त्र में नहीं वर्णन किया गया उसका श्रीमद्भागवत में उन्होंने वर्णन। कोई कोई कहते हैं राधिका जी का नाम ही नहीं है, अरे मूर्खो अंधो राधिका जी का नाम नहीं है। अच्छा बतलाओ, मैं नाम नहीं लूंगा किंतु आप जितने हैं ना आप नाम देखेंगे अपने आप समझ जाए। एक लड़का था बड़ा सांवला सा, हाथ में मुरली लिए हुए है और यहां पर पीतांबर है, त्रिभंग रूप में खड़े होकर के बड़े सुंदरत्व से राधे राधे बंसी में बजाता है। ये कौन है? कहने की जरूरत, ग्राम करने की जरूरत है? एक सांवला सलूना पीतांबर धारण किए हुए अपने हाथों में बंसी रखे हुए इस गोवर्धन को धारण कर लिया। ये बदलाव तो कौन है? गोवर्धन को धारण करने वाला, ये नाम बदलाने की जरूरत है। उसी तरह से रात हो रही थी और एक गोपी अंतर ध्यान होकर के चली गई और कृष्ण ने रात बंद कर दिया, उसको खोजने के लिए ढूंढने के लिए चले, इसका नाम क्या है ये बतलाने की जरूरत है? इसलिए ये तो संपूर्ण भागवत में आदि से लेकर के जितने भी ये 12 स्कंद है सब जगह राधा जी का गोपियों का नाम। दूसरी बात, उसमें 300 कितने कितने उसमें अध्याय हैं?
335।
अच्छा, वो समस्त अध्याय में राधा जी का नाम है। यही नहीं, मैं तो जानता हूं और हमने अपने गुरु परिवार से सुना है ऐसा कोई श्लोक नहीं जिसमें राधा जी का नाम है। श्रीमद भागवत का कोई श्लोक लाओ तो जिसमें राव नहीं लिखा हो, है कोई? देखो जाकर के ऐसा कोई श्लोक ही नहीं जिसमें राव नहीं आए, तरह से क्या होगा? अरे अंकों राधिका जी का नाम नहीं है, उनकी लीलाओं से तुम नहीं समझ रहे। आज पहला ही श्लोक है, जन्मादि करो अर्थविघोषणा ब्रह्म विद्या आदि कवे मुनियंती सूर्य ते जो भाग विदान जत्र गिरिमयो त्रिशर्गो अमृषा धामना स्वयं सदा निरक्त सत्यम परम उस राजकार्य के लिए नमस्कार। इसको नहीं समझने से ऐसे समझो निगम कल्प करोगतमुखम सुखमुखा अमृत संयुतम युवक भागवतम रसमालय परस कहा है श्रीमद भागवत में? राधा जी को हटा दो भागवत से और रस निकालो तो निकलेगा कोई रस? राधा जी नहीं आएंगे, शक्तियां नहीं आएंगी, निकालो खूब रस, ताली की कोई रस नहीं। इसलिए आदि से अंत तक यहां पर किस समाप्त किया सत्यम परम अधिमयी श्लोक इस बच्चे ने कहा, उसमें ने सत्यम परम धनी राधिका जी को अंत में नमस्कार किया। राधा जी का नाम प्रत्येक छत्र में प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक भाव में राधिका जी का नाम प्रूफ है। उसमें समझने वाले समझेंगे, मूर्ख लोग नहीं इसको समझ सकते। इस तरह से मेरी बात वो पूरी रह गई कि कृष्ण का आविर्भाव जो होता है जो प्रकट होते हैं धर्म के संस्थापन के लिए अस्त्रों का विनाश करने के लिए दुभार है और धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा में भारत में सबसे बड़ा धर्म क्या बतलाया गया? परो धर्मो जतो भक्ति खजे अहे तो क्या अवदर्शिता जा भक्ति। जितने प्रकार की आराधना है श्रीमती राधिका की आराधना की मुक्त विग्रह है, वो स्वयं ही आराधना है। इस श्लोक में उनका नाम स्पष्ट रूप में दिया गया है, ओम राधसा नमः उसमें भी राधिका जी का नाम उसमें है। इस राधिका जी के कृष्ण के प्रति प्रेम को स्थापन करने के लिए ये सब चीजें उसमें रमानाभ कितने श्लोक हैं इसका कोई हिसाब नहीं है।
इसलिए इस गोपियों के प्रेम को दिखलाने के लिए ये श्रीमद्भागवत का प्रकाश हुआ। असल में ये इसलिए प्राचीन काल से हम देखते हैं कि कृष्ण ने ये महाभारत युद्ध जो किया इसका मूल क्या कारण था, उनकी प्यारी एक द्रौपदी का अपमान किया गया और उस एक महिला के अपमान के लिए, वो कैसी परम भक्त कृष्ण थी, और उस महिला के अपमान के लिए कौरव दलों को और उन सब दलों का एकदम विनाश ध्वंस कर दिया है। एक सीता जी के लिए रामचंद्र जी ने किया समस्त राम और असुरों को ध्वंस कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि यहां पर ऐसे ही ये सब महिलाएं अधिक संख्या में नहीं आए, पुरुष लोग धन बटोरने में बहुत लगे हुए हैं, अराजनीति करने में लगे हुए, डकैती करने में लगे हुए, जितने डकैत देखिए दो एक को छोड़कर सब डकैत मांग सिंह इत्यादि सब डकैत कौन है, डाली और गोप रखने वाले सब कालिका हयान ये सब पृथ्वी के भाग स्वरूप है, आप लोग उसमें से नहीं होंगे, आप लोग देवता है जो उसमें से छन करके यहां पर बैठे। मैं देता हूं अभी कल कीर्तन हुआ ना, सब लोग मथुरा वाले करेंगे, इनसे महिलाओं का दल इतना एकदम उम्र पड़ा है और बड़े सुंदर रूप से कीर्तन किया, मेरी छाती खुल करके आनंद से बढ़ गई। ऐसे ही संख्या में बढ़ाओ तुम लोग, धर्म प्राचीन काल से ही तुम लोगों के हाथ में, तुम्हारे बच्चे हो धार्मिक हो, तुम्हारी बच्चियां हो धार्मिक हो, उनके भी लड़के हो धार्मिक हो, तुम लोग उनके आदि गुरु हो, इसलिए इसी रूप में तुम लोग चलना। मैं निराशा हूं अगला जाती हूं, मैं कुछ नहीं ऐसा नहीं, हम तो देखते हैं कि पुरुष लोग भी अवल हो गए हैं, यहां पर देखते तुम उस समय को करने से ये आप लोगों को देखकर के मुझे बहुत उत्साह होता है, आप लोग धर्म की रक्षा कर सकें, विशेष करके कभी काल में पुरुष लोगों की है जाओ बहुत कम, यदि कहेंगे भागवत पाठ नहीं हमें कुछ दे दीजिए नहीं देंगे सर, और महिलाओं के पास में उनके पास में जो दो चार पैसे इधर उधर से उन्हीं से चोरी चमारी करके जैसे तैसे रखा है वो सब कुछ देंगे। कृष्ण को भी ऐसे ही किया, इसलिए मैं देखता हूं कि कली काल जितना बढ़ता जाता है ये धर्म भी कर्म भी सब आप लोगों महिलाओं के पास में सुरक्षित अब हो रहे हैं, पुरुष लोग तो भक्ति वो चले गए हैं तो राजनीति आज देखिए तो कैसा मुलायम सिंह नपसिन सिंह और सब उनको देखिए, राजनीति धर्म नीति को छोड़कर के राजनीति काम नीति अर्थ नीति लड़ाई झगड़े की नीति सब इसमें करते हुए वो कहेंगे बड़े लज्जा की बात नहीं, गौ के मठ में जाकर के महिलाओं के साथ हम लोग बैठने लिए तो हमारा बहुत ही दुर्भाग्य की बात। मैं कहता हूं कि उनका दुर्भाग्य है कि ये कथा हो नहीं जाते, उनका दुर्भाग्य है। अब देखें चौदह लोगों ने भी छिप करके आने वाली बहुत सी चौपाई होंगी, चौदह लोग नहीं आएंगे, अरे मैं व्यापारी विद्वानी सभा में कैसे जाऊं, हमारा नाम गड़बड़ हो जाए, वो लोग कहें हमारा शील रेखा उस सभा में कैसे जाए, महिलाओं की सभा में वो महिलाओं की सभा है कहें, अरे यहां धर्म नहीं है वहां अधर्म है ऐसा है। इसलिए मैं आप लोगों को विशेष विशेष धन्यवाद देता हूं और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपने बल दें कि आप लोग और बढ़ें, खूब प्रचार कीजिए, अगली बार जब भागवत की कथा हो तो हमको ऊपर में एक और नाट्य मंदिर जैसा बनाना पड़े, हम लोग पहला बने और सब चलेंगे, अपना जन्माष्टमी आ रही है ना, अभी से तैयार हो जाओ, एक एक महिला अपने साथ साथ में दस दस महिलाओं को लेकर के आए, समस्त मथुरा मठ लो बहुत कीर्तन करते हरि बोल राम, तब इसलिए आप लोग भी संकुचित और कमित मत होंगे, उसको मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनमें धर्म की कोई बात नहीं है, तो उनको बात समय नहीं है कुछ भागवत की कथा सुनने के लिए भगवान का भजन करने के लिए समय, उन लोगों के लिए आप लोग भी उत्साह के साथ में भगवान का भजन करेंगे।